ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही लगन के साथ आप सभी सुन रहे हैं, हर रोज लॉकडाउन का भरपूर लाभ ले रहे हैं। बाबा का शुक्रिया निकलता है कि इस विपत्ति के समय को भी बाबा ने हमारे लिए इतना सुंदर तपस्या काल बना दिया है। चलिए 2-3 मिनट के लिए, जब तक और भाई बहन जुड़े, आज के विषय के हिसाब से हम 2 मिनट बाबा के प्यार में लीन होकर बैठते हैं। 2-3 मिनट बाकी सब बातें छोड़कर बाबा के प्यार में लीन होकर बैठें। चारों तरफ से बिल्कुल डिटैच हो जाएं। मन बुद्धि में कुछ है तो छोड़ दें, क्योंकि इस विषय से, इस अनुभूति से बढ़कर इस ब्रह्मांड में और कोई अनुभूति नहीं, इससे कीमती और कोई चीज नहीं जो हम चर्चा करने वाले हैं। ओम शांति। सभी को आवाज स्पष्ट आ रही है, पहले बताएंगे, एक बार लिख के बताएंगे। सभी को आवाज स्पष्ट आ रही है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले आवाज की ट्यूनिंग हो जाए, उसके बाद फिर भगवान से ट्यूनिंग करेंगे हम सभी। आवाज ठीक है? ट्यूनिंग विद गॉड, भगवान के साथ ट्यूनिंग कैसे करें? बहुत सुंदर विषय है, जिसे भक्ति में अनेक नामों से जानते हैं। इस विषय को कैसे लॉ लगाएं, कैसे तार जोड़ें, लॉ कैसे लगाएं, तार कैसे जोड़ें, ज्योत में ज्योत कैसे लीन करें, अनेक शब्द फिर इंग्लिश में आ गया, हाउ टू ट्यून विद गॉड, भगवान के साथ ट्यूनिंग कैसे हो। और आप सभी मीठे भाई बहन जो इतनी लगन से सब कुछ निपटा करके सुनने के लिए बैठते हैं, तो ये जो आपकी लगन है, ये लगन बताती है कि आपको परफेक्ट ट्यूनिंग करने की लगन है, उसमें डूब जाने की विधि सीखना चाहते हैं आप, उसी के पुरुषार्थ में आप लगे हुए हो और काफी हद तक आपने कर भी लिया है उसको, लेकिन अभी प्रकाष्ठा तक, अंतिम मंजिल तक पहुंचना है, जहां जाकर हमारे मन को यथार्थ सुकून प्राप्त हो जाए, लगे हमारे मन को कि हाँ मैं जिस मंजिल की खोज में था तो वो मंजिल मुझे मिल गई है। तो ट्यूनिंग क्या होती है, तार क्या जुड़ने का अर्थ क्या होता है, इसको हम कुछ उदाहरणों के साथ देखेंगे आज और अनुभव भी करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम किसके साथ ट्यूनिंग करने की बात कर रहे हैं। हम ट्यूनिंग करने की बात कर रहे हैं इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति के साथ, भले वो हमारे लिए बाबा हो गया है, परंतु संसार के लिए वो भगवान है, वो अल्लाह है, वो गॉड है, वो खुदा है। ग्रंथ भरे पड़े हैं उसकी महिमा में, उसके बावजूद भी लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और वो हमें इतना सहजता से मिल गया, उसके बारे में पूरा एनसाइक्लोपीडिया, पूरा ज्ञान हमारे सामने स्पष्ट कर दिया, उसने स्वयं आकर के स्पष्ट कर दिया। तो अब उसके साथ हम ट्यूनिंग करने चले हैं। ट्यूनिंग को हम सरल शब्दों में समझेंगे, वैसे ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, लेकिन इसको सरल शब्दों में हर कोई समझ सकता है। जब दो दिल होते हैं, दो दिल, तो इस दिल से जब कुछ निकल रहा इस दिल के लिए, जो इस दिल से निकल रहा सेम भाव के साथ सेम अर्थ के साथ, सेम फीलिंग के साथ जो इस दिल ने भेजा, इस दिल ने पकड़ लिया, इसको ट्यूनिंग कहते हैं। अभी जैसे हम इंटरनेट पर बात कर रहे हैं, कई बार आता है साउंड इज नॉट क्लियर, पिक्चर इज नॉट क्लियर, या पिक्चर अटक गई है। तो ये सब क्यों हो रहा है? किसी न किसी फैक्टर के कारण, कितने सिस्टम के बीच में फैक्टर लगे हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट का, यहाँ लैपटॉप और वहाँ पर आपका मोबाइल या टीवी, इसका उसके साथ कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन कट रहा है, कोई कारण बन रहा है, यानी ट्यूनिंग नहीं हो रही है पूरी। तो ट्यूनिंग ना होने से सिग्नल पूरा नहीं जा रहा है, जो यहाँ बोला जा रहा वो वहाँ पहुँच नहीं रहा, जिस भाव से बोला जा रहा उस भाव से पकड़ने में दिक्कत आ रही है। ऐसे ही इस संसार की हर आत्मा के बीच में होता है। आज आत्माओं की आत्माओं से ट्यूनिंग भी गड़बड़ हो गई है। जब हम देवी देवता थे तो हमारी ट्यूनिंग दिलों की इतनी अच्छी थी कि कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी, केवल स्वतः ही, स्वभावता ही हमारी एक दूसरे के साथ दिल मिले हुए थे, कोई समस्या थी ही नहीं। इतनी परफेक्ट ट्यूनिंग थी, सोल कॉन्शियस स्टेज में हम सभी थे, इशारों से ही मैक्सिमम बात हो जाती थी, केवल वस्तुओं के, व्यक्तियों के, स्थान के नाम हुआ करते थे ज्यादा भाषा में। सत्यु की भाषा में सेंटेंस भी नहीं लंबे होते, वहां पर लंबी चौड़ी बातें नहीं होती। एक तो संकल्पों से संकल्प मिले हैं, लेकिन बस कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके कार्य हो जाता था। आज भी आप देखेंगे, जब कभी आप मौन व्रत में रहते हैं, मौन, वो घर में गुस्से वाला मौन नहीं बोल रहे, जब नाराज होके मौन हो जाते हैं, वो वाला मौन नहीं, जो हम मौन रखते हैं तपस्या के लिए, उस वाले मौन में कुछ और ट्यूनिंग गड़बड़ होती है। इस वाले मौन में जो हम तपस्या के लिए रखते हैं, हमें जब बात अपनी कहनी होती है, दूसरे को समझानी होती है, तो या तो इशारे यूज करते हैं या चिट्ठी पर लिखेंगे। कई बार सिर्फ दृष्टि से ही, है ना, हाथों के इशारे भी नहीं, सिर्फ दृष्टि के ही इशारे, और कई बार इशारे भी नहीं, सिर्फ भाव, भाव से ही समझ लेते हम या समझा देते हैं। परंतु इसमें एक चीज देखेंगे आप कि जो दूसरे साइड वाला है, वो जितना वो भी समझने का प्रयास करेगा, वो भी आपके उसी लेवल पर, चाहे वो एक मिनट के लिए ध्यान दे करके आपकी फ्रीक्वेंसी पर आकर के कैच करेगा, तो आपकी बात समझ जाएगा। वास्तव में हमारा 24 घंटे ये प्रोसेस चल ही रहा है, ट्यूनिंग का प्रोसेस। हर घड़ी जो आत्माओं से हम बात कर रहे हैं वो यही है। किसी से पॉजिटिव ट्यूनिंग है, किसी से नेगेटिव ट्यूनिंग है, किसी से बोलकर है, किसी से बिना बोले है। बच्चा माँ को कुछ बोलता नहीं है, माँ फिर भी समझ जाती है। बच्चे को बोलना आता ही नहीं है, लेकिन माँ फिर भी समझ जाती है। यानी हमारे मन में बहुत शक्तियां हैं, और वो शक्तियां हमने जब इंसानी संबंधों में भी लगाई, देहधारियों में भी लगाया, जैसे आज से थोड़े समय पहले पिता और पुत्र की ट्यूनिंग, और आज पिता और पुत्र की ट्यूनिंग दोनों एक जैसी हैं या अलग अलग हैं, क्या कहेंगे? पहले जो पिता पुत्र की ट्यूनिंग थी और अभी, पहले जो टीचर और स्टूडेंट की ट्यूनिंग थी, पहले जो हस्बैंड और वाइफ की ट्यूनिंग थी, किसी भी रिलेशन में ले लीजिए आप, पहले जो दोस्त की दोस्त से ट्यूनिंग थी और अब जो ट्यूनिंग है, अंतर आया है या नहीं आया है? ठीक है, तो ये जो अंतर आया है उसके कारण रिलेशंस में फर्क आया है। जो एक दिल से प्रेम के वाइब्रेशंस भेजे जा रहे हैं, दूसरा दिल उस प्रेम के वाइब्रेशंस को कैच नहीं कर पा रहा है। अभी हम पहले सोल टू सोल देख रहे हैं। मां बहुत प्यार से बच्चे को कुछ संदेश दे रही है, टीचर बहुत प्यार से उसके कल्याण के लिए बोल रहा है, लेकिन वो उसको कल्याण समझना तो दूर, कई बार होता है कि कल्याण के लिए भावना भेजी जा रही है, चलो भावना नहीं समझ में आ रही, कम से कम समझ में आ रहा है, भावना पकड़ में नहीं आ रही पर समझ आ रहा है कि ये ठीक बोल रहे हैं, इतना तो आ रहा है, भले वो परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, ट्यूनिंग इतनी गड़बड़ हो गई है, कई आत्माएं अच्छे शब्दों का भी गलत भाव निकाल लेते हैं, कई बार बोलने वाले के भाव गलत होते हैं, शब्द अच्छे होते हैं, उन शब्दों को सामने वाला समझ करके धोखा खा जाता है, गलत भाव पकड़ नहीं पाता है। कई बार शब्द अच्छे नहीं होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, भाव अच्छा होता है, सामने वाला स्ट्रिक्ट शब्दों को देखकर अच्छे भाव को नहीं पकड़ पाता है। कई बार भाव अच्छे होते हैं, शब्द स्ट्रिक्ट होते हैं, सामने वाला स्ट्रिक्ट शब्दों को ना देखकर शब्दों के पीछे के भाव को पकड़ता है और बोलता है मेरे भले के लिए बोल रहे हैं। देखिए वैरायटी ऑफ ट्यूनिंग है, ये हमारे मन के ऊपर निर्भर करता है। तो ट्यूनिंग का अर्थ जो बताया, तार जोड़ने का अर्थ है, तार जुड़ा है तो करंट आनी चाहिए। अब तार जुड़ा है पर करंट नहीं आ रही है तो कहीं डाउट आएगा कि कहीं ना कहीं से तार का कनेक्शन कटा हुआ है। ठीक ऐसे ही अब हम बाबा की ओर आते हैं कि भगवान शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। भगवान के साथ हम योग भी लगा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके लंबे समय से बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत चेंज आया लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस नहीं हो रहा है। उसका कारण कि जो बात बाबा कह रहे हैं वो कई बार बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, अकल में आ रही है, अमल में नहीं आ रही है। समझे आप? अकल में आ रही है, अमल में नहीं आ रही है। इसका मतलब जो दिल है, दिमाग राइट और रॉन्ग को कैच कर रहा है कि गुस्सा नहीं करना है, व्यर्थ समय नहीं गंवाना है, सोना नहीं है, लेकिन दिल उसको अमल में नहीं ला पा रहा है। जब तक दिल में ना जाए बात तब तक अमल में नहीं आएगी। अकल में आ गई है, अमल में नहीं आई। तो इसलिए अब हमको ये ट्यूनिंग बढ़ानी है और आने वाला समय जो आपने कहानी सुनी होगी कि वो बिल्ली के पोंगरे जो भट्टी में रखे गए थे, परंतु जब भगवान के साथ ट्यूनिंग लगाई, तार लगाई, उसकी याद में बैठ गए तो चारों तरफ भट्टा तपता रहा, लेकिन जिस घड़े के अंदर वो बिल्ली के बच्चे थे वो कच्चा रहा। ये योग की कमाल है, ये आपकी ट्यूनिंग की कमाल है। जिसकी भगवान के साथ ट्यूनिंग अच्छी होगी, चाहे चारों तरफ हलचल हो, तूफान हो, भूकंप हो, कुछ भी हो, दुख हो, चीख पुकार हो, जैसे मेले के अंदर किसी माँ का बच्चा खो जाए, 10,000 आवाजों में भी अपने बच्चे की चीख सुनने की ताकत रखती है वो माँ, सुन सकती है वो, उसकी ट्यूनिंग ऐसी है, बच्चा भले ना सुन पाए माँ सुन लेगी। कई उदाहरण मिले हैं पुनर्जन्म के, माओं ने तो पिछले जन्म के भी अपने संबंधियों को पहचान लिया, माँ के दिलों ने खोए हुए संतानों को की आवाज़ सुन ली। ऐसी बहुत सी कहानियां बचपन में सुनी हमने। तो चाहे कितनी भी परिस्थितियां हों लेकिन मेरा मन भगवान की आवाज सुन सके, इसको थोड़ा और हम क्लियर करते हैं। बाबा ने जो भी महावाक्य उच्चारित किए हैं वो महावाक्य जिस भाव से बाबा हमारी तरफ सेंड कर रहा है, जिस भाव से वो कह रहा है, जो शक्ति वो मेरी ओर सकाश भेज रहा है, क्या मेरा दिल ये समझ तो आ रहा है हमको कि बाबा सूक्ष्म लोक में बैठा हुआ 51 वर्षों से शक्तियां सकाश दे रहा है, लेकिन अगर वो सकाश दे रहा है और मुझे भी दे रहा है तो फिर मेरे मन में बेचैनी क्यों है, हलचल क्यों है, क्यों मुझे परमात्मा की शक्ति नहीं मिल रही? थोड़ी बहुत सभी को मिली है और किसी किसी ने, जिन्होंने ये ट्यूनिंग दिल से कर ली है ना, उनको बहुत भी मिली है, हमारे में ही बैठे हैं बहुत, लेकिन हर किसी का होना चाहिए। अगर एक ही जगह पर बैठकर हम 10 मिनट योग कर रहे 100 आत्माएं, तो 100 की स्थिति अलग अलग होती है, कमेंट्री एक ही है लेकिन स्थिति अलग अलग है, उठने के बाद अनुभव अलग अलग है, क्योंकि ट्यूनिंग अलग अलग थी, इसलिए रिसीविंग अलग अलग हुई, इसलिए प्राप्ति अलग अलग हुई है। तो ये बड़ा सुंदर एक रिसर्च का विषय है। मैं कई बार आसमान की तरफ देखा करता हूं, छत पर खड़े होकर इतने विशाल आसमान को देखता हूं, और उसके बाद आसमान से पार जाता हूं, उससे पार, उससे पार, जो ज्ञान बाबा ने दिया, सूर्य चांद सितारों की दुनिया से बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर, एक छोटी सी बिंदी है। अब सोचिए, इतना बड़ा आसमान, इतना बड़ा संसार, आसमान से पार इतनी बड़ा ब्रह्मांड, उसके बाद एक छोटी सी बिंदी है, और एक बिंदी यहां बैठी है मस्तक के बीच में। इस बिंदी को उस बिंदी से जोड़ना है। बड़ा मेरे को वंडर कई बार लगता है, हमारा योग क्या वंडर है ये। वो लोग तो ग्रहों से जुड़ते हैं, ग्रह तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमें ये अदृश्य बिंदी उस अदृश्य बिंदी से जोड़नी है, और फिर उसकी शक्तियां लेनी है। ऐसा वंडरफुल राजयोग है ये। आने वाले वक्त में इस राजयोग की बहुत महिमा होने वाली है, और जिन्होंने ये राजयोग परफेक्टली सीख लिया, जिन्होंने भगवान के साथ ट्यूनिंग लगा ली, न केवल वे सुरक्षित हो जाएंगे, उनके नजदीक में आसपास जिनकी ट्यूनिंग उनसे होगी, आपकी ट्यूनिंग भगवान से और जिनकी ट्यूनिंग आपसे होगी, उनका भी काफी हद तक उद्धार हो जाएगा। तो ये ऐसी वंडरफुल ट्यूनिंग है ये, इसको सीखना है, इसको, इसी को जीवन बनाना है। अभी बाबा के प्यार को ही जीवन बनाना है, क्योंकि जब आप प्यार में लीन होते हो, फिर संसार में विलीन नहीं होते हो, नहीं तो मन बुद्धि संसार में विलीन हो जाती है। तो बाबा के साथ ट्यूनिंग, अर्थात जो बाबा ने कहा, कितने प्यार से कहा। कई बार ऐसा हुआ कि हमने किसी को थोड़ा सा सख्त लहजे में, थोड़ा सा श्री कृष्ण के लहजे में, श्री कृष्ण ने बड़ा सीधा सीधा ज्ञान दिया था, हे अर्जुन, ये तू जिनको देख रहा है, ये सब काल के ग्रास हैं, ये सब मरने वाले हैं, तू इन्हें जीवित मत जान, इन सभी को तो काल खाने ही वाला है, तू शस्त्र उठा और इनको मार डाल। सीधा सीधा ज्ञान सुनाया था, और सीधा सीधा ज्ञान ही वास्तव में सत्य होता है। ये आर्ट ऑफ लिविंग घुमा फिरा के बातें बोलने से शक्ति नहीं मिलती है, सिर्फ थोड़ी सी बुद्धि कन्विंस होती है। इसलिए ज्ञान सीधा सीधा सुनो, आत्मा अजरमर अविनाशी है, शरीर विनाशी है, ये दुनिया के संबंध विनाशी हैं, इनसे अविनाशी प्राप्ति की कल्पना मत करो, इन्होंने कभी भी धोखा दे देना है, यानी कभी भी ये काल के ग्रास बन जाने वाले हैं। आज जीवित हैं, कल जीवित नहीं है, हम भी आज इस देह में हैं, कल नहीं है, ये सत्य ज्ञान है। तो किसी को ऐसा सुना दिया, बात अच्छी सुनाई थी, लेकिन उनको बात बुरी लग गई, तो हमने उसके बाद परिवर्तन किया कि अच्छी बात भी उसके दिल तक नहीं जा रही है। तो बाबा, तो उन्होंने कहा हमको, शिकायत की कि आप बहुत सूखे लहजे में स्ट्रिक्ट बोलते हो। तो मैंने पूछा उनसे, ध्यान से सुनिएगा आप भी ये बात। मैंने कहा क्या चाहते हैं आप, प्यार से बोलूं? बोले अच्छा, प्यार से बोलने से ठीक हो जाओगे? बोले हाँ। मैंने कहा मीठे भाई, बाबा बोल रहा है 84 साल से? बोले हाँ। प्यार से बोल रहा है या जोश में या रोब में बोल रहा है? बोला प्यार से। 84 वर्ष से बोल रहा है? आपको भी 8-10 साल हो गए ज्ञान में। उसके प्यार की बात गई क्या तुम्हारे दिल में? तुम कहते हो प्यार से बोलना, मैं समझ जाऊंगा। कौन बोल सकता है भगवान से ज्यादा प्यार से? उससे ज्यादा प्यार से तो कोई बोल ही नहीं सकता। 84 वर्ष कौन प्यार से समझा सकता है अपनी औलाद को भी? आप अपनी लौकिक औलाद को 10 मिनट नहीं समझा सकते प्यार से। उसके बाद ही चांटा वाटा जड़ देंगे या डांट लगा देंगे। अगर कोई ऐसे छोटे बच्चे को भी, इनोसेंट बच्चा है 1 साल 1.5 साल का, कोई ऐसे करता है आओ बेटा आओ, बेशक वो पिता ही है, बेशक वो पापा ही है, ऐसे बोलता आओ बेटा, अभी बच्चे ने पापा को ज्यादा नहीं समझा है, माँ को समझ लिया है, पापा के पास जाता नहीं है, वो माँ से चिपका हुआ है, तो कहते आ जाओ आ जाओ। वो तो बाप है, वो प्यार से बुला रहा है आओ बेटा, वो बेटा आता नहीं, वो फिर कहता आओ बेटा, वो फिर भाग जाता है, वो फिर कहता है, बाप है ना, फिर कहता है आओ बेटा। 10 मिनट हो गए उसको बुलाते हुए, क्या करेगा वो बाप? नहीं आ रहा वो बच्चा, है ना? जैसे हमारी आम भाषा में बोल देते हैं ना, क्या बोलेंगे, जा मर परे। बस 10 मिनट में बोल दिया जा, और भी कोई शब्द ऐसा यूज कर लेंगे। 51 वर्षों से सूक्ष्म लोक में बाबा का फोटो देखा है, दोनों भाएं पसारे, इंतजार कर रहा है आओ मेरे बच्चे, वापिस चलने का समय हो गया है, अब घर जाना है, अब धरती का पाठ तुम्हारा पूरा हो गया है, अब ये पुराने बंधन छोड़ने हैं। क्यों नहीं मेरे दिल को ये कैच हो रहा? कितने प्यार से धरती पे आके वो दादी के तन के द्वारा कितनी मुरलियों में बोल के गया है कि अब वापिस जाने का समय है, इस दुनिया से ममत उठा लो। तो बाबा की बात दिल में क्यों नहीं जा रही? अगर आपने एक बार भी बाबा को बोला है कि मेरा बाबा, अभी हम बोलेंगे ना तो ये चैट राजधानी की स्पीड से दौड़ने लगेगी, हाँ मेरा बाबा है, मेरा बाबा है, मेरा है, मैंने बाबा से प्यार किया है, मैंने सच्चा प्यार, अभी अभी दौड़ने लगेगी। हम कहते हैं ये छोड़ो, आप एक बार भी अगर दिल से बाबा को कहा है मेरा बाबा, अगर दिल से मान लिया है मेरा बाबा, तो फिर उस बाबा की बात दिल क्यों नहीं पकड़ रहा है? प्रश्न क्यों करता है? गुस्सा कैसे छोड़ूं, चिंता कैसे छोड़ूं, दुनिया वालों की बात कैसे पकड़ रहा है दिल? नफरत वाली दुनिया, विनाशी प्राप्ति वाले संबंध, उनकी बात पकड़ रहा है, उनकी चिंताएं पकड़ रहा है, परंतु भगवान के वायदे नहीं पकड़ रहा है। उसने कहा है, चिंता मत करना। चलिए अभी हम आपको ट्यूनिंग का एक एग्जाम्पल देते हैं। पहले एक उदाहरण बताइए। मान लीजिए कोई भगत है, अच्छा भगत है, और वो भगत रास्ते में जा रहा है, भगवान का नाम लेते हुए। अचानक भगवान परम धाम से प्रकट हो जाए उनके सामने, और प्रकट होकर के उनको दर्शन दे दे और कहे, मेरे प्यारे भक्त, तुम चिंता मत करना, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, जब याद कर लोगे हाजिर हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम मेरे दिल में हो। एक बार बोला सिर्फ, और भगवान छो मंत्र हो गए, परम धाम लौट गए। सिर्फ एक बार बोला। अब उस भगत की स्थिति क्या होगी? पूरा जीवन सोच कर देखो, क्या स्थिति होगी? पूरा जीवन उसकी स्थिति क्या होगी? तुलसीदास को एक बार साक्षात्कार हो गया था, कईयों को तो हुआ ही नहीं साक्षात्कार। मीरा को बस पत्थर की मूर्ति मिल गई थी, बिना उसके भी प्रेम कर लिया, और यहां पर साक्षात भगवान आकर बोलता है। तो भगत के का जो लाइफ है वो भावना पर चलता है, उसमें ज्ञान नहीं होता। अब हमारी लाइफ में क्या हो गया, या आजकल की दुनिया में भी क्या हो गया? अक्ल ज्यादा हो गई, भावना का सिस्टम गड़बड़ हो गया। भावना से भावना को कैच करना, ट्यून करना मुश्किल हो गया। अक्ल ज्यादा हो गई, समझदार हम बहुत ज्यादा हो गए। वो ज्यादा समझ हमारे लिए खतरनाक हो गई। ऐसे ही लौकिक जीवन में ज्यादा समझदार बना दिए बच्चे, माँ बाप ओल्ड एज होम में पहुंच गए। ज्यादा समझदार बन गए, पति पत्नी झगड़ रहे हैं, ईगो इश्यूज हो गए हैं, दिमाग से दिमाग टकरा रहे हैं, दिलों के बीच में दिमाग आ गए हैं। यहां भी ऐसा ही है, हमारे दिल की ट्यूनिंग भगवान से होना चाह रही, पर बीच में या तो दूसरे की ट्यूनिंग आ रही, दिमाग बीच में आ रहे। एक बाबा का मैंने आपको बताया था पहले कि पिछले कई वर्षों से मैं सिर्फ 2-3 महावाक्यों को ही अध्ययन करता हूं। मुरलियां तो रोज सुनते हैं, लेकिन मुख्य अध्ययन बार बार सुनता हूं उसको। आप भी सुनिए, सुनाया है पहले कई बार। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है ये कि प्रेम का समंदर स्वयं भगवान, जिसे हम 63 जन्मों से ढूंढ रहे थे, वो आकर मेरे सामने मेरी नजरों में नजरें डाल उसने कहा, हर एक बच्चा, यानी वो मुझे कह रहा, जिनकी ट्यूनिंग अच्छी होगी वो इसे सभा को कहा हुआ महावाक्य नहीं मानेंगे। हर एक बच्चा बोला है, यानी मुझे बोला है, और सिर्फ आबू में रहने वालों को नहीं बोला है, जहां भी रहते हो, यानी वो तुम्हारे हर जगह को देख रहा है। छोटे से गांव में रहते हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, साकार में वो कहता है, तू जहां भी है तू मेरे दिल में है, दिल में समाया है। हे आत्मा, हर बच्चा मेरे दिल में समाया। आप जरा अक्ल से बता दो, दिल भी शायद पकड़ रहा होगा अभी, पर अक्ल से बता दो, ये महावाक्य सुनने के बाद भगवान के प्रेम को उसके दिल में बसने के बाद वो स्वीकार कर रहा, तुम मेरे दिल में हो, और क्या चाहिए तुम्हारे दिल को, और क्या चाहिए हे आत्मा, इससे बड़ी कौन सी दौलत है संसार में। क्या चाहिए इससे ज्यादा, और ये एक बार नहीं, हजारों बार बोला है उसने। क्या हुआ है हमारे दिलों को, स्वयं भगवान हमारे सामने आकर बार बार ये बोले कि मुझे तुमसे प्यार है, तुम तो मेरे नाज हो, तुम्हारे जैसे बच्चों पे तो नाज है, एक बार देख लें अगर हम अपनी तरफ। जब उसने शुरू किया था बोलना तो हम कितने विकारों में थे, आज जो बनाए हैं वो भी उसी ने बनाए हैं, और आज भी उसके आसपास भी नहीं उसकी पवित्रता के। तो विचार करो उसका प्यार मिल रहा, मेरी बात भी अगर दिल में छेद नहीं कर रही तो इसका मतलब ट्यूनिंग में गड़बड़ है। इसका मतलब निश्चय नहीं कि भगवान बोल रहा, या फिर ये निश्चय नहीं कि भगवान का प्यार सबसे बड़ी दौलत है इस संसार की। तुम इस बात को कैच करके देखो, बाकी बातें निकल जाएंगी दिल से। अभी आपने जब महावाक्य सुना तो जब बाबा ने कहा हर एक बच्चा दिल में समाया है, कुछ अबोध बच्चों ने, अबोध ही कहेंगे, आपको क्या लगता है भगवान ये कहे कि तुम मेरे दिल में समाए हो, ये महसूस करने की बात है या ताली बजाने की बात है। इसलिए अबोध कहा है, वो समझ ही नहीं पाए कि भगवान प्रेम के का समंदर भेज रहा तुम्हारी ओर, तुमने सिर्फ ऊपर से ताली बजाकर क्या किया, उसको अप्रिशिएट किया क्या? समंदर को पी लेना चाहिए। पी के देखो इस समंदर को, बाबा कहता हप कर लो, पी के देखो इस समंदर को, जो कुछ अंदर है सब धुल जाएगा। बैठ के देखो दो मिनट इसी महावाक्य की के आनंद में बैठ के देखो, दुख दूर होने ही चाहिए, नहीं होते हैं तो तुम्हारी ट्यूनिंग ठीक करनी पड़ेगी। दो मिनट बैठो पहले, फिर से सुन लो एक बार, हजार बार भी सुनो सच्चे दिल से सुनोगे, जो बिगड़ी हुई अकल है वो सब ठीक हो जाएगी। भटकी बुद्धि, सीता जी ने दिल की आवाज सुनी नहीं श्री राम की। उसने कहा ऐसा कोई हिरण नहीं होता, हे मेरी प्रिय सीता, ऐसा कोई हिरण नहीं होता, ये कोई छलावा घूम रहा है। मानी थोड़ी, मानी नहीं, कहती नहीं हिरण चाहिए, मेरे को हिरण लाके दो रूठ जाऊंगी। लाड लड़ाने के लिए हिरण लेने गया, राउंड ले गया उठा के, लेकिन उसके बाद एक साल रावण की कैद में रही। एक साल रावण हाथ नहीं उठा लगा पाया, जो उसके घर से उठा लाया और उसके राज्य में उसके अधिकार में होते भी हाथ नहीं लगा पाया, क्योंकि सीता ने गलती ठीक कर ली थी। वहां राम को दिल से बाहर किया, रावण की चीज को दिल के अंदर किया था, रावण ले गया। अब रावण के घर में चीज की इच्छा छोड़ दी, राम को पकड़ लिया, बस मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। फिर रावण की मजाल है जो नजदीक आ जाए, हे आत्मा सीताएं, राम को दिल में बसाओ। हिरण मांगना बंद करो, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, ये दिला दो, मेरे बच्चे को, मेरे पति को, ये प्यार नहीं है, ये तो पुकार है, भीख मांगना है, ये तो भिखारीपन है। हमने देखा कि भाई मंदिर में भी क्या होता है, भगवान की मूर्तियां खड़ी हैं कि मेरा भक्त आ रहा है, भगत आ रहा है अपने घर से, मेरा भगत आ रहा है, भगवान खुश होता है, मेरा भगत आ रहा है, मुझसे प्यार करने आ रहा है। भगत आके कहता है ये दिला देना, ये दिला देना, इतना दिला देना, इतने का भोग लगा दूंगा, बस वो चुन्नी बांध के, घंटी बांध के, घंटी बजा के निकल लेता है, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखता ही नहीं। यहां प्रेम का समंदर प्रेम बांट रहा, उसके प्रेम की अनुभूतियों को छोड़कर क्या मांगते हो तुम? ऐसे विघ्न जो तुम्हें भगवान से जोड़े, ये बोलो विघ्न रहे। महाभारत का एक एपिसोड सुनाते हैं आपको, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, श्री कृष्ण कुंती के पास गया, उसने कहा बुआ, बुआ लगती थी उसकी, बुआ मांगो क्या मांगती हो? बोलती है बहुत सा दुख दे देना। वो कहता है दुख क्यों मांग रही है, अभी तो इतने बड़े दुख से निकल के आई है। बोले जब दुख था तो तू पग पग साथ था, अब दुख पूरा हुआ है, सुख आया है, तू चल दिया है साथ छोड़ के। वो अपनी मथुरा जा रहा था, दुख की चिंता ना करो, परेशानियों की चिंता ना करो, प्यार में लीन होने की विधि सीखो, ट्यूनिंग बाबा से करो। अब ये देखना, आज अभ्यास करना, किसी देहधारी की कड़वी बात अब चेक कर लेना, 2 घंटा मुरली सुनने के बाद भी, 2 घंटा मुरली सुनी, क्लास सुनी, इतनी प्यार की बातें चर्चा होती हैं वो सुनी, उसके बाद भी देहधारियों की बात कड़वी लगती कि नहीं लगती? वो कड़वी बात कैसे पकड़ रहा है मन? जिस मन ने भगवान की मीठी बात पकड़ ली हो, वो कड़वी क्यों पकड़ रहा है? और ये चेक करके देख लेना, कड़वी जल्दी पकड़ता है या मीठी पकड़ता है? ट्यूनिंग में गड़बड़ है। इसके लिए अंतर्मुखी हो जाओ, थोड़ा अंतर्मुखी होने का प्रतिज्ञा करो, बाबा के साथ थोड़ा वक्त बिताओ तो प्यार बढ़े। बाबा काम बनाने की मशीन नहीं है कि उसके पास जाओ, 2-4 समस्याएं सुनाओ, बस थोड़ा सा हल्के हो जाओ और आ जाओ। वो समंदर है, वो क्या कर सकता है उसको चिंतन करो, उसके साथ ट्यूनिंग हो जाए तो स्वर्ग के सीन सीनरियां दिखने लगेंगी। इस संसार के सब दुख, मिरवा मौत मलोका शिकार, सब खत्म हो जाएंगे, मन भागना बंद कर देगा, फिर तुम्हारी सब जिम्मेवारियों की जिम्मेवारी तो वो ले रहा है, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारा मन विचलित क्यों होता है? प्रेम में लीन हो जाओ, देहधारियों की कड़वी बातें या व्यर्थ बातें अगर मेरा मन पकड़ रहा है तो समझो अभी प्रेम और करना है, बाबा को और समय देना है। चलो प्रतिज्ञा कीजिए, प्रतिज्ञा से ही परिवर्तन है। बस अब बात समझ में भी आ गई, लेकिन परिवर्तन तो तभी होगा, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे, अब बाबा की हूं बस। बार बार करना है, एक दो बार नहीं, जब तक ये ट्यूनिंग ना हो जाए, जब तक आत्मा मर ना मिटे परमात्मा पर लगे रहना है। चलो बैठो 2 मिनट। केवल बाबा की हूं, बाबा की ही होके रहूंगी, अब इस दिल में किसी और को स्थान नहीं है, बस किसी को भी दृढ़ता से पहरेदार लगा दो दरवाजे पर दिल के, कोई देहधारी, फिर चाहे कोई नजदीकी संबंधी है, कोई भी है, कोई देहधारी दिल के अंदर, भगवान से बड़ा कोई संबंधी नहीं है, कोई भी नहीं, ये सब विनाशी संबंधी हैं, हे अर्जुन, ये सब काल के ग्रास हैं, ये सब जाने वाले हैं, और तू भी इनके पीछे जाने वाला, पता नहीं इनसे पहले जाने वाला, क्यों उलझा पड़ा है, मरने वाले मरे हुओं का क्यों शोक कर रहे हैं, ये अर्जुन श्री कृष्ण का ज्ञान। चलो लीन हो जाओ, शांति, ओम शांति, ओम शांति।